गहरा सांस लगभग 25 से 30 बार फोर्सफुली फेंकना है बाहर। हाँ, गहरा भरे पूरी गहराई से और फोर्सफुली सांस को बाहर फेंके। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज और बहुत इफेक्टिव। 30 से 40 दिन लगातार अगर आप करते हैं तो आपकी वाइटल कैपेसिटी स्पायरोमीटर के ऊपर अपनी आप चेक कर सकते हैं। लैब में या एक स्पायरोमीटर होता है जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी पता लगता है, वाइटल कैपेसिटी। तो पहले दिन चेक करें और 30-40 दिन ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करने के बाद फिर चेक करें तो आपको लगभग 10-15% का इंप्रूवमेंट आपके लंग्स के अंदर, आपकी वाइटल कैपेसिटी के अंदर मिलेगा। तो जो भी सिस्टम आप कर रहे हैं टोटली साइंटिफिक है और बहुत अच्छे से रिसर्च लेवल पे तक उसको यूज किया गया है। छोड़ दीजिए, आराम से रिलैक्स। चलिए अभी योगिक कंसंट्रेशन, प्रार्थना, प्रेयर, दोनों हाथों को हल्का सा प्रेस करते जाएंगे अपर आर्म से। अंगूठे हमारे लगभग कंठकूप के निकट, हल्का सा हाथों को प्रेस करते जाएं अपर आर्म से। हल्का सा चेस्ट हमारा प्रेशर देते जाए, चेस्ट के ऊपर प्रेशर बनाना है हाथ से और मन को एकाग्र करने का प्रयास करना है। अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें, बिल्कुल अपने दोनों आईब्रोज के बीच जो हमारा आज्ञा चक्र है, जितना हमारी कंसंट्रेशन अच्छी है उतना हमारा आज्ञा चक्र भी आपको मदद करता है सारा दिन। मन को एकाग्र करें, जिनको भी आप मानते हैं, सुप्रीम सोल, सुप्रीम सत्ता, परमपिता परमात्मा, उनको बड़े प्यार से याद करें। दोनों हाथों को हल्का सा रब करें, आंखों पर स्पर्श दें, छोड़ दें। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। ब्रीदिंग की एक और एक्सरसाइज हमने जो सेंटर पार्ट तक के लिए की थी ब्रेन के, उसको रिपीट करते हैं, दो ऐड करेंगे। ऊपर देखते हैं, फिर गहरा सांस लेना और छोड़ना। ब्रीदिंग को आप फील करें, बिल्कुल हमारा जो सेंटर पार्ट है ब्रेन के, जो तीन पार्ट हैं बायोलॉजिकली और एनाटॉमिकली अगर देखें, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला, जो सेंटर पार्ट है वहां तक आप महसूस करें कंसंट्रेशन को। गहरा सांस भरना है, जितना ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी में, जितना ऑक्सीजन इनटेक आपका बढ़ता है उतना सेल्स और टिश्यूज भी हमारे हेल्दी होते हैं। छोड़ दीजिए, अभी ब्रीदिंग को फिर रिपीट करेंगे, लेकिन ब्रीदिंग को अभी फील करेंगे हमारे स्पाइन और नेक का जो जॉइंट है। हमारे दो सिस्टम है, CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारे स्पाइन से होकर गुजरता है एक सिस्टम, एक हमारा ब्रेन से जो सिस्टम कंट्रोल होता है। दोनों ही सिस्टम्स को एक्टिवेट रखने के लिए सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। गर्दन को नीचे टच करेंगे जलंधर बंद की मुद्रा में, ब्रीदिंग को फील करेंगे आपके स्पाइन और नेक के ज्वाइंट तक। लंबा और गहरा सांस लगभग 20 से 25 बार कम से कम। शुरू कीजिए। हाँ, महसूस करें कि ब्रीदिंग का जो कंबाइंड हीट है वो हिट करता है आपके बिल्कुल नेक और स्पाइन का जो लास्ट है वहां उस जॉइंट तक। जो भी न्यूरो की कुछ दिक्कतें आती हैं बॉडी में, कहीं नंबनेस आती है या कहीं आपको लगता है कि सुनपना जैसे हो रहा है, उन चीजों के लिए हमारा जितना न्यूरो वाला सिस्टम, हमारे न्यूरॉन्स जितना एक्टिवेट रहते हैं उतना आपको मदद मिलती है। जी हाँ, सर्वाइकल अगर है तो गर्दन को आधा झुकाएं, जहां आपको लग रहा है कि पेन हो गया है उससे नीचे नहीं जाएंगे। हाँ, तो सर्वाइकल वाले गर्दन को उतना ही झुकाएं जहां लग रहा है आपको कि पेन हो गया है। बाकी सर्वाइकल की क्योर करते जाएं, धीरे धीरे महीने में 30-40 दिन में कंट्रोल में आता है सर्वाइकल भी। छोड़ दीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और आपसे एक और ब्रीदिंग की एक्सरसाइज ऐड कर रहे हैं, इसमें हम ब्रीदिंग को फील करेंगे आपके आज्ञा चक्र के ऊपर। हमने कोशिश किया है सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र को क्लीन करने के लिए। तो यहां ब्रीदिंग को आप फील करेंगे बिल्कुल आपके प्रकृति के मध्य में, आईब्रोज के मध्य में देखेंगे सामने, लगभग 200 मीटर स्ट्रेट, गहरा सांस भरना और छोड़ना, गर्दन आपकी सीधी, लगभग 4 से 4.5 अंगुल मेजरमेंट, ताकि गर्दन हमारी सीधी रह पाए। सामने देखेंगे बिल्कुल लंबा और गहरा सांस लेना और छोड़ना। ब्रीदिंग को फील करें बिल्कुल आईब्रोज के बीच में। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं योगा की, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, लाइफ लॉन्ग आपको फायदा देने वाली है। जितना याद रहती है एटलीस्ट 5 से 10 मिनट घर जाके भी आप अभ्यास अगर करते रहेंगे तो आपके ब्रेन सेल्स भी हेल्दी रहेंगे, माइंड भी आपका सशक्त बनता जाएगा, जितना यहां राजयोग सीख के जा रहे हैं। छोड़ दीजिए आराम से, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चलिए दो एक्सरसाइज हमने की थी ब्रीदिंग की, एक और उसमें ऐड करते हैं। आज हम एक एक्सरसाइज ऐड कर रहे हैं, इसमें हम कानों को भी बंद करेंगे, आंखों को भी बंद करेंगे, नोस्ट्रल्स को भी क्लोज करेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे अभी बारिश का मौसम है, ह्यूमिड मौसम है, तो कानों से हल्का सा वैक्स कई बार जम जाता है, कानों में हमिंग जैसी आवाज भी कई बार आने शुरू होती है और हल्का सा पेन भी कई बार करता है। और रीजन होता है कि ज्यादातर कोई वैक्स जम रहा है, और ज्यादा अगर पेन है तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वो एक अलग चीज है, वो आपको डायग्नोस करा के प्रॉपर आपके डॉक्टर से मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी चीजों को आप अपने से कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमिड वाले को, कानों को हमिंग वाली आवाज, और कानों में जो वैक्स जमता है उसके लिए आपके इफेक्टिव है। इसमें पूरा फोर्सफुली कानों को बंद करते हैं पहले, अभी नहीं कीजिए, सुनेगा नहीं। फर्स्ट फिंगर हमारी आईज के ऊपर, मिडिल फिंगर नोस्ट्रल्स के ऊपर, लंबा और गहरा श्वास भरेंगे, पूरा प्रेशर से गालों को फुला के रखेंगे, एयर का प्रेशर हमारा कानों की तरफ, आईज की तरफ और फेस की तरफ, जितना फेस के ऊपर पड़ता है उतना सलाइवा जो अंदर से निकलता है वो आपका बढ़ता है, जो टिश्यूज है वहां से फैलते हैं, जो सारा दिन में आप यूज कर रहे हैं अपने मुंह को वो फैलते हैं, मसूड़ों तक जो स्ट्रेचिंग आपकी पड़ती है, तो मसूड़ों से कई बार रेयर केसेस में कभी कभी ब्लड आता है, उसको भी क्योर करती है क्रिया। और कभी जब आप उठते हैं, कभी कभी रेयर केसेस में होता है कि मुख से थोड़ा सा फाउल स्मेल आती है, थोड़ा दुर्गंध आती है, उसको भी दूर करने में आपको मदद मिलती है। और यही प्रेशर जो कानों की तरफ जाके पड़ता है अंदर से बाहर की तरफ, सारा दिन हमारी कर्मेंद्रियों पे जो प्रेशर है बाहर से अंदर की तरफ है, इस क्रिया के दौरान अंदर से बाहर की तरफ हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर प्रेशर है, तो उसको एक्टिवेट करता है, स्ट्रेच करता है, और उन नसों को जितना आपने स्ट्रेच किए हैं उनके जो सिक्रेशन है उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है, इसलिए आपको फायदा होता है। चलिए कानों को बंद करेंगे पूरा फोर्सफुली। हाँ, वापस जब आएंगे पहले आंखें खोलेंगे, आंखों से उंगली हटानी है, फिर नोस्ट्रल से धीरे धीरे आपको श्वास बाहर करना है इस तरह से, और जर्क से एकदम जर्क के साथ कानों से अंगूठों को हटाना है, ताकि जो प्रेशर बना है, जो एयर का प्रेशर बना है, वो आपके एकदम से उस वैक्स को और कानों को एक्टिवेट करने में आपको मदद करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, कान बंद, आंखें बंद, नोस्ट्रल्स क्लोज, लंबा और गहरा श्वास। हाँ, सांस रोक के रखेंगे तभी प्रेशर अंदर से क्रिएट होगा। जितनी देर आपने सांस रोक के रखा है उतनी देर आपको स्टेमिना और आपके हार्ट की एफिशिएंसी भी बढ़ाने में आपको हेल्प मिलती है। लेकिन अगर बीपी है या हार्ट की कोई दिक्कत है तो आपकी एफिशिएंसी का 60% तक ही यूज करें, उससे ज्यादा आपको सांस नहीं रोकना है। वैक्स ज्यादा है ना, हाँ, तो ये अभी जो क्रिया मैंने कराई है, हाँ, वो ज्यादातर जिस तरफ सोते हैं ना उस तरफ ज्यादा राइट साइड, जो आपका रात में सोने का जो पोस्चर है उस वजह से एक साइड में कभी होता है, दोनों साइड है, एक साइड थोड़ा सा कम हो सकता है, एक साइड थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना, तो इससे हटेगा। दूसरा, स्टीम आप ले सकते हैं, जो स्टीम लेंगे ना वो भी वैक्स को फेस के ऊपर, स्टीम, लोकल स्टीम आप ले सकते हैं, वो भी वहां से रिलीज करती है। बाकी आपके डॉक्टर की एडवाइस के साथ अगर ज्यादा वैक्स जमा है तो जो सोलीवैक्स वगैरह जो ड्रॉप्स आती हैं ईयर ड्रॉप्स, वो आपकी डॉक्टर की एडवाइस के साथ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी योगिक क्रियाएं आपको वहां हेल्प करती हैं, लेकिन अगर ज्यादा कोई चीज बढ़ रही है तो वहां एक बार डॉक्टर की एडवाइस जरूर लीजिए। सारी पथी आपको फायदा देती है, चाहे एलोपैथी है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे योगा है, नेचुरोपैथी है, जो भी है, सारी पैथी कहीं ना कहीं आपको फायदा देती है। तो आपके हिसाब से क्या सूट कर रहे हैं अपने उस तरह से उसको यूज करना है, ठीक है। चलिए छोड़ दीजिए, चलो एक और क्रिया करते हैं। बिल्कुल अपने गर्दन को सिर्फ झुकाने हैं और आईज को एक टक सिर्फ अपने किसी एक पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, आंखों को देखते रहिए एक टक, कोशिश करें कि पलकें आपकी झपके नहीं। हाँ, एक ही पॉइंट देखते हैं। त्राटक का अभ्यास है इनिशियल। त्राटक के बहुत सारे प्रकार हैं, कहीं दीपक के ऊपर त्राटक करते हैं, पॉइंट के ऊपर त्राटक करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा अभ्यास है। जितना देर आप एक ही तक देखते रहते हैं उतना धीरे धीरे आपकी आईज के जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा लोड पड़ता है और थोड़ी देर बाद आंखों से पानी आना शुरू होता है। वो जो पानी आता है वो जो भी धूल के कण है या गंदगी आंखों में जमती है उसको बाहर करने में आपको हेल्प करता है। और रेयर केसेस में किसी किसी को एज बढ़ने के साथ साथ ड्राई आईज की जो प्रॉब्लम हो जाती है उसको भी क्योर करने में आपको हेल्प मिलती है। बड़ा मुश्किल काम है मन और आंखों को एक ही पॉइंट पे एकाग्र करना। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती है वैसे वैसे आपका मन भी सशक्त होता है। दोनों हाथों को हल्का सा रब करें, आंखों पे स्पर्श दें, छोड़ दें। चलिए रिलैक्स आराम से। एक और फेस के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। श्वास भरेंगे मुख से गोल बनाते हुए, गालों को बाहर की तरफ फुला के रखेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा देर रोक सकते हैं उतना रोक के रखेंगे। अगर बीपी या हार्ट की दिक्कत है तो आपकी कैपेसिटी 50 और 60% ही आपको यूज करना है, ज्यादा नहीं। और वापस जब आएंगे श्वास आपको नाक से बाहर करना है। चलिए श्वास भरेंगे मुख से गोल बनाते हुए, हल्का सा आवाज करते हुए, नोस्टल से धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए। बहुत ही सिंपल क्रिया है, लेकिन जितना फेस को आपने फुलाया है बाहर की तरफ उतना जो स्किन के ऊपर टोनिंग है आपकी वो बढ़ती है, और सारा दिन जो धूल या ऑयल कई बार स्किन से निकलता है वो आपका वहां से हटता है। इसके साथ साथ फेस पे वीक में एक बार लोकल स्टीम आप ले सकते हैं। छोड़ दीजिए आराम से, रिलैक्स। चलिए दो एक्सरसाइज गर्दन वाली जो हमने की थी उसको रिपीट करते हैं, सीधा आगे और पीछे, उसके बाद रोटेशन। सर्वाइकल है अगर तो अवॉइड करना है आपने, आगे की तरफ जितना जहां आपको लगता है कि उससे आगे पेन शुरू होता है वहीं से वापस चले जाना है। नीचे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करें, पीछे ज्यादा से ज्यादा। छोड़ दीजिए, एक और एक्सरसाइज सर्वाइकल के लिए। फिजियोथेरेपी में जो एक्टिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज देते हैं, यहां से दोनों हाथों को आपने लॉक करना है सर के पीछे की तरफ, हाथों का प्रेशर आगे की तरफ देना है और जो नेक का प्रेशर है हमारा नेक मसल्स का वो पीछे की तरफ देना है। अपोजिट काम करेगा, हाथ आगे की तरफ और नेक मसल्स का प्रेशर पीछे की तरफ। चलिए, एक्सरसाइज के कुछ प्रकार होते हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। उसमें से हम यूज कर रहे हैं आइसोमेट्रिक सिस्टम, जहां रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है और नेक मसल्स की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि सर्वाइकल में कई बार हमारी नेक मसल्स की स्ट्रेंथ भी यूज होना शुरू होती है, क्योंकि दर्द की वजह से हम ज्यादा उन मसल्स को यूज नहीं करते हैं। हाँ, छोड़ दीजिए, रिलैक्स आराम से, धीरे से। अभी अपोजिट करेंगे, यहां से माथे पे प्रेशर आगे से पीछे की तरफ हाथों का और माथे का प्रेशर आगे की तरफ, ताकि हमारे नेक मसल्स हल्का सा स्ट्रेंथ गेन करें। हल्का सा स्ट्रेचिंग और कंपन जैसा आप कहने मसल्स के आप आसपास आप महसूस करेंगे, हल्का सा प्रेशर आप मसल्स का जब यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल सी क्रियाएं हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं। 2 से 3 बार जितना आपके पास टाइम है 2-3 बार उसको रिपीट कर लीजिए। बाकी रेगुलर जब गर्दन वाली एक्सरसाइज करते जाते हैं तो धीरे धीरे सर्वाइकल की दिक्कत कम होती है। इसके साथ साथ अगर सर्वाइकल है तो जो पिलो आप यूज कर रहे हैं बिल्कुल हल्का कर दीजिए, और जब सोते हैं तो कोशिश करें कि पहले लेफ्ट साइड आप सोएं। जब लेफ्ट साइड आप सोते हैं तो राइट स्वर हमारा चलता है, सूर्य स्वर चलता है। वो सूर्य स्वर आपको डाइजेशन में भी मदद करते हैं और सर्वाइकल को क्योर करने में भी आपकी हेल्प करता है, ठीक है। इसके साथ सर्वाइकल ज्यादा एक्यूट हो गया है तो कंधों की भी एक्सरसाइज आप साथ साथ करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। प्लस ठंडी और गर्म सेक, ठंडा कोई भी कपड़ा या पॉलीथिन में बर्फ डाल के आप इस पोर्शन पर रख सकते हैं, और 1 मिनट गर्म कपड़ा निचोड़ के, ठीक है। जो कपड़ा निचोड़ के आप पानी का रखते हैं उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि जो स्टीम निकलती है हमारे स्किन की लेयर्स हैं, 4-5 लेयर्स हैं, है ना, उन लेयर्स को क्रॉस करके वो स्टीम अंदर तक मसल्स को हमारे रिलैक्स करती है। इसलिए कपड़े वाली जो सिकाई है गर्म पानी में निचोड़ के वो ज्यादा अच्छा आपको इफेक्ट डालती है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर बोतल वाला चलेगा ही, अदरवाइज कपड़े से जो सिकाई करेंगे और बर्फ पॉलीथिन में डाल के जो सिकाई करेंगे हल्का हल्का वो आपको वहां हेल्प करेगी। चलिए जी जी, खाना खाने के बाद जब लेटेंगे तो लेफ्ट साइड में लेटेंगे क्योंकि हमें डाइजेशन चाहिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। डाइजेशन राइट स्वर में, जब हम सोते हैं जब भी हमारा राइट स्वर चलता है वो डाइजेशन को थोड़ा सा फास्ट करता है, इसलिए लेफ्ट वाली जो करवट है आपको अपोजिट चलता है, स्वर हमारा अपोजिट चलता है। लेफ्ट साइड सोएंगे तो राइट स्वर चलेगा, राइट साइड सोएंगे तो लेफ्ट चलेगा, है ना। तो फर्स्ट फेज अगर आपने राइट चला के रखा है खाना खाने के बाद जब सोते हैं तो फर्स्ट फेज अगर आपने राइट वाला लिया है तो जितना डाइजेशन का आपको अच्छा टाइम मिलना था वो मिलता है। उसके साथ साथ डिपेंड करता है आपकी स्लीप की क्वालिटी कैसी है। अगर आजकल स्लीप लैब्स बनी हुई है जो हमने, उसमें आपके वेव्स रात को सोने के टाइम कितना चल रहे हैं, 2 से 4 चल रहे हैं, 6 से 8 चल रहे हैं, 8 से 16 चल रहे हैं, है ना। जो मसल्स के साथ साथ हमारी जो रैपिड आई मूवमेंट से वो चेक किया जाता है कि आपकी आई मूवमेंट्स किस तरह से चल रही है, आपकी नींद की क्वालिटी क्या है। अगर नींद आपकी अच्छी है, साउंड है, तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी नींद के, बिल्कुल जब अल्फा वेव्स में हमारा माइंड जाता है, डीप स्लीप में जाता है, उस स्टेज पे आके कुछ हीलिंग अपने आप हमारी बॉडी करती है जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के पास और मेडिकल्स में नहीं हो पाता। लेकिन हम उसको, वो चीजें जहां हमें चाहिए वो हमको लेनी है, बहुत हेल्पफुल है। लेकिन जहां मेडिटेशन और योगा हेल्प करता है वो उससे भी थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वो बेसिक्स आप अपने हिसाब से उन चीजों को अच्छे से गहराई से थोड़ा जान के करें तो आपको फायदा रहेगा। चलिए कंधों के लिए जी, आप यहां रहे हैं धीरे धीरे आते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा सा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अपोजिट चलता है, जब आप लेफ्ट सोएंगे तो राइट नोस्ट्रल चलता है। हाँ जी हाँ जी, स्टार्टिंग जो है ना फर्स्ट फेज आपका उस पर कीजिए, बाकी 1-1.5 घंटे के बाद बॉडी अपने आप चेंज करती है। जैसे वो स्लीप साइकिल्स होते हैं कुछ, एक साइकिल के बाद बॉडी अपने आप मूवमेंट में आती है, तो फर्स्ट साइकिल आपका एटलीस्ट उस पोजिशन पे निकल जाए। कंधे वाले एक्सरसाइज शुरू करते हैं, हमने एक बार फिर दोबारा आज चेक करते हैं, राइट ऊपर से लेके आइए हाथ और लेफ्ट वाला नीचे से पीछे, कोशिश करें कि आपका टच हो जाए हाथ पीछे, नहीं पकड़ना है पकड़ना है, नीचे से लेके छोड़ दीजिए। अभी लेफ्ट वाला ऊपर से ले आइए और राइट वाला हाथ नीचे से ले आइए, एटलीस्ट आपका टच हो जाए हाथ पीछे, फिंगर्स टच हो जाए, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। हाँ, नोटिस क्या होता है कि जो साइड हम जैसे राइट हैंडर्स हैं तो राइट हैंडर्स की राइट वाली साइड थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होती है, मसल्स भी स्लाइटली हेल्दी, ज्यादा हेल्दी होती है, स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा होती है। जो लेफ्ट हैंड होते हैं उनका लेफ्ट साइड ज्यादा एक्टिव होता है, तो नॉर्मली हम राइट हैंड को ज्यादा यूज करते हैं, तो जितना हमारा बाल एंड सॉकेट जॉइंट इस तरह से कंधे का जोड़ ऐसे ऐसे स्लाइड कर रहा है, तो राइट वाली मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से उसकी मूवमेंट हमारी ज्यादा है, लेफ्ट वाला कम यूज होने की वजह से कम होता है, ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ लेस यूज और डिस यूज, जो हमारे सेल्स हैं जिनका जिनको हमने कम यूज किया है। तो जॉइंट्स के साथ जो लिगामेंट्स हैं और टेंडेंट्स हैं, अगर उनको हम कम यूज कर रहे हैं, पूरी स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं या अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है, स्ट्रेंथ भी कम होती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा एक्सरसाइज अगर करते हैं रेगुलर, अपने जॉइंट्स की, अपने बोन्स के स्ट्रक्चर भी आपका अच्छा रहता है, डेंसिटी भी अच्छी रहती है, लिगामेंट्स और टेंडेंट्स भी आपके अच्छे रहते हैं। चलिए कंधे की एक्सरसाइज शुरू करते हैं जल्दी से। ब्रीदिंग बाहर करेंगे और कंधे को श्वास बाहर किया, रोक के रखा, श्वास बाहर बाहर, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड कर लो, छोड़ना नहीं है सांस, मैंने बाहर करा के रखा है, ब्रीथ आउट करा है आपको, जी छोड़ दीजिए। अभी सांस भर के करेंगे, सांस भरा, गालों को फुला के रखो, कोहनी सीधी रखें, कोहनी सीधी रखें, कंधे को ऊपर लेके जाए, कोहनी सीधी, यहां से इसको लेके आइए। अब ब्रीदिंग मैंने इसलिए आपको कराया था कि प्राणायाम का भी आपको साथ साथ फायदा मिले, कम टाइम में ज्यादा फायदा ले पाए, ज्यादा रिफ्रेश यहां सारा दिन महसूस करें। अब कोहनी सीधी रखेंगे तो ये एंगल आपका चेंज होगा, कोहनी मुड़ रही है आपकी, कोहनी मुड़नी नहीं, सीधा लिखे, यहां से जब लिखेंगे तब यहां स्ट्रेचिंग आएगी। कोहनी जब मुड़ी है तो हमारा फलक्रम चेंज होता है फिजिक्स के हिसाब से, तो एंगल उतना नहीं बनता, उतनी स्ट्रेचिंग नहीं दे पाते। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आराम से रिलैक्स। चलिए आपको यहां लेके हल्का सा जर्क देना है आपने, ताकि कंधा भी हमारा खुले और हमारा जो जॉइंट है कोहनी का वो भी अच्छे से खुले। यहां टाइटली रखना है, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, बिल्कुल टाइट और एकदम से सामने, श्वास भी बाहर और जर्क के साथ। हाँ, श्वास बाहर किया और हाथ को खोला, श्वास भरते हुए वापस, हाँ खोला सामने, कोहनी और कंधा दोनों को आपके स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है और जो मसल्स हैं आपके ट्राइसेप्स बाइसेप्स वो भी मजबूत होते हैं। छोड़ दीजिए, आराम से रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अभी दोनों हाथों से रोटेशन शुरू करेंगे, श्वास भर के रखेंगे मुख से, आगे से पीछे पहले, हाँ कोहनी सीधी रखें, कोहनी सीधी रखेंगे तो ज्यादा फायदा है, आगे से पीछे, छोड़ दीजिए, अपोजिट पीछे से आगे, श्वास फिर भर के रखें, हाँ कोहनी जितना कोशिश करके आप सीधा लेके जाते हैं उतना स्ट्रेचिंग यहां ज्यादा से ज्यादा आपकी बढ़ती, नहीं कोहनी मुड़ रही है, कोहनी सीधा थोड़ा रखेंगे ना तो यहां स्ट्रेचिंग आएगा। कोहनी मोड़ने वाला सिस्टम हमारा 80% घर में वो तो सारा दिन यूज होता ही है, कोहनी एकदम से यहां से समझिए, इसमें हमने डंडा बांध दिया, ये बिल्कुल सीधी, अब यहां से आपको मूव करना, ये इस तरह से, और यहीं से पीछे से आगे लेके आना, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद भी अगर समझो कि ज्यादा गैप है आपका, तो ठंडी और गर्म सेक आपको हेल्प करेगी, वही 4 मिनट ठंडे वाला और 1 मिनट के लिए गर्म। तो फ्रोजन शोल्डर कई बार हो जाता है, उसको भी आपके क्योर करने में हेल्प मिलती है। रिलैक्स रिलैक्स आराम से। चलिए अभी एक एक्सरसाइज हिप जॉइंट के लिए, यहां से आपको पैर को ऊपर लेके आना है। हाँ, हिप जॉइंट सबसे बड़ा जॉइंट है हमारी बॉडी में, तो जितना एक्टिवेट रहता है, जितना खुला रहता है, उतना हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज अच्छी रहती हैं। और जितना ये मूवमेंट्स आप करते रहते हैं ना, उतना आपकी जॉइंट्स भी हेल्दी रहते हैं। कोशिश करें ऊपर तक ज्यादा से ज्यादा हमारा हिप जॉइंट की मूवमेंट बने, 40-50% तो सारा दिन मूवमेंट में, वॉकिंग में, रनिंग में, स्टेप्स चढ़ने में आता है। छोड़ दीजिए आराम से। चलिए भी हल्का सा दोनों हाथों को सामने रखिए, दोनों पैरों में डिस्टेंस, और धीरे धीरे आपका लेफ्ट साइड टर्न करते जाइए, लेफ्ट साइड थोड़ी देर होल्ड करके रखें। धीरे धीरे वापस आए सामने, फिर चेंज करें साइड, दूसरी साइड। हाँ, थोड़ा सा होल्ड करें, जितना होल्ड करेंगे उतना हमारा जो वेस्ट वाला फैट है वो वहां से छूटता है, थोड़ा सा कम होता है। और बेली साइज बहनों के लिए लगभग 32 और 34 के बीच में अगर रहता है तो बेटर है, भाइयों के लिए 36 के आसपास। और बीएमआई भी हमारा अगर 25 के आसपास रहता है, बॉडी मास इंडेक्स भी, तो बेटर है। बॉडी मास इंडेक्स मैंने आपकी हाइट और वेट, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, अगर आपका 25 के आसपास आता है बीएमआई तो बेटर है। अगर लेकिन थोड़ा एक्सीड कर रहा है, लगभग 30 के आसपास अगर जा रहा है तो फर्स्ट ग्रेड ओबेसिटी बनती है। यस, नहीं, हाइट इन मीटर्स, हाइट इन मीटर्स, वेट इन केजी, हाइट इन मीटर्स, जैसे 1.75, 1.25, जो भी हाइट आपकी हाइट बनती है उस हिसाब से उतना हाइट का स्क्वेयर, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वेयर। तो बीएमआई आपका 23, 24, 25, 28 जो भी आपका आ रहा है उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। फिटनेस का जितना थोड़ा थोड़ा सा भी आप ध्यान रखेंगे, अवेयरनेस रखेंगे, उतना आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और जो राजयोग यहां से सीख के जा रहे हैं वो आपके मन को सशक्त करेगा, तो आप शरीर से भी हेल्दी रहें, मन से भी सशक्त रहें, पावरफुल रहें, यही आपको ब्रह्मा कुमारी के यहां से फायदा होने वाला है। चलिए छोड़ दीजिए, अभी हम थोड़ा सा आगे झुकेंगे, लेकिन तीन स्टेप में। पैरों में हल्का सा डिस्टेंस, लगभग 1.5 से 2 फीट, हाथों को लॉक किया, सांस बाहर करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। थ्री पे आपने, हाँ नहीं, अगर बैक पेन है तो आप आगे ज्यादा नहीं झुकेंगे, जहां आपको लगता है कि इससे आगे पेन शुरू होता है वहीं तक आप होल्ड कर लीजिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब पेन शुरू होता है हम उस पोर्शन की सारी मूवमेंट बंद कर देते हैं, और सारी मूवमेंट बंद करने की वजह से धीरे धीरे जो उसकी बेंडिंग कैपेसिटी है वो और डिटीरियोरेट होना शुरू होती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मूवमेंट वहां देते जाइए। रेगुलर जब एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे अपने आप आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, जो वहां से आपके लिगामेंट्स टेंडेंट्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो सब ठीक होता है। और पेट के लिए वही ठंडी गर्म सेक आप दे सकते हैं। और कमर में अगर लगातार ज्यादा लंबे टाइम से दर्द बन रहा है तो जो गद्दा जिसपे आप सोते हैं अगर ज्यादा पुराना हो गया है तो उसकी डेंसिटी जो होती है ना बीच बीच में से वो बैठ जाती है। तो जब सोते हैं रात में तो हमारे जो दोनों आर्क हैं कनकेव और कन्वेक्स वहां चेंजेस आना शुरू हो जाती है, वो पोस्टुरल डिफॉर्मिटी, फिर वो पेन आपको ज्यादा परेशान करता है। तो इसलिए अगर 10-15 साल से ज्यादा पुराने हैं तो उनको चेंज कर लीजिए। आजकल फोम भी बड़ी अच्छी, इस डॉक्टर्स की जो एडवाइस है उसके हिसाब से ही आपका 60 डेंसिटी, 70 डेंसिटी, इवन 80 डेंसिटी तक की फोम आना शुरू हो गई, तो बहुत कम बैठती है, जो सोने में आपको इजी रहेगा और आपका जो स्पाइन है रहेगा हेल्दी रहेगा। तो कमर दर्द का एक रीजन वो भी होता है। दूसरा, जो सिटिंग आपकी अगर ज्यादा है एक ही पोस्चर में, जब आपको लगता है कि थोड़ा सा पेन हो रहा है तो उस पोस्चर को 2-4-5 मिनट के लिए कम से कम चेंज कर लीजिए, क्योंकि पेन आपको ये बताता है कि अभी मसल्स ओवरलोड होना शुरू हुए हैं। तो उस टाइम उसको थोड़ी देर, अपना जो भी फैसिलिटी है आपके पास ऑफिस में जिस तरह से, तो थोड़ा सा उसको वॉकिंग करके चेंज कर सकते हैं। अगर रिलैक्स करने के लिए आपके पास है सुविधा तो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। बाकी ठंडी गर्म सेक प्लस जो बैक बेंडिंग वाले आसन होते हैं कुछ, जैसे भुजंग आसन है, अर्ध चक्रासन है जो भी करते हैं, उसको आप अभ्यास कर सकते हैं हल्का हल्का। कमर से थोड़ा डिस्टेंस रखिए, दोनों हाथों की सपोर्ट, कमर के लंपर और कोक्सिस वाला जो पार्ट है हमारा स्पाइन का लास्ट वाला, वहां आपने सपोर्ट देना है। हाथ का प्रेशर रहेगा सपोर्ट देते हुए, और पैर में आंखें खुली रहेंगी, धीरे धीरे श्वास भरते हुए चलेंगे पीछे की तरफ, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस, फिर एक बार चलें, फिर एक बार चलें। कपास वाली क्या होती है, उतना इवन नहीं बन पाती है, कपास वैसे बेटर है, कपास क्योंकि सिंथेटिक नहीं है वैसे बेटर है अगर उसको आप मेंटेन रख पाते हैं कि उसका कपास क्या होता है कि दो तीन साल में ना धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाता है, वो सिंक हो जाता है। फोम वाली अगर आजकल हाई डेंसिटी आती है तो वो लंबे टाइम तक मेंटेन रहती है, बेटर कपास है, लेकिन उसको आपको साल दो साल के बाद वो दोबारा उसको सेट कराना पड़ेगा। वैसे फोम अच्छा है, ठीक है ना, तो कपास को आपको दो तीन साल में उसको दोबारा से उसको सेटिंग करानी पड़ेगी, तब वो बेटर है, क्योंकि वो नुकसान भी नहीं करती है, फोम हल्का सा एलर्जी भी कई बार करती है, पसीना जो आता है उस पर भी वहां थोड़ा सा रिएक्शन होता है, तो कपास अच्छा है। चलिए रिलैक्स रिलैक्स, आराम से चलो। अभी दो एक्सरसाइज घुटनों के लिए और टखनों के लिए, ठीक है। यहां से पंजों के ऊपर आएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे और एक बार शुरू किया तो एडी को टच नहीं करेंगे, 20 से 25 बार आपने अप एंड डाउन मूवमेंट करना, एडी टच नहीं करने, लेकिन एक बार शुरू किया। हाँ, हील पेन और टो पेन के लिए आपको इफेक्टिव है। इसके साथ अगर हील पेन आप महसूस कर रहे हैं तो शूज जो यूज करते हैं अगर ज्यादा पुराना हो गया तो चेंज कर लें, अच्छे जो शूज आते हैं आजकल अच्छी कंपनी के, जहां फोम उनकी एंगल आपकी एडी और आर्क के हिसाब से सूट करती है, क्योंकि हर किसी के पैर का जो आर्क एक होता है वो अपने हिसाब से होता है, उसकी अलग अलग एग्जैक्ट मेजरमेंट सबकी एक सी नहीं होती है, तो किसी को कोई कंपनी का शूज सूट करता है, किसी को कोई, उस तरह से अपना शूज अच्छे उस पर रखें। और दूसरा, ठंडी और गर्म बकेट एक रात को सोने के टाइम रख सकते हैं, तो दोनों पैरों को आपने थोड़ी देर ठंडे पानी में डाला 4 मिनट और 1 मिनट गर्म पानी में डाला, तो हील पेन आपका क्योर होता है वहां से। दूसरा, कई बार यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तब भी आपका हील्स में पेन होना शुरू होता है, तो वो आपका डायग्नोज करा के वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। नी पेन में जंपिंग जब करें तो हल्का सा फोम नीचे रखें ताकि जर्क ना बैठे वहां, है ना, क्योंकि वो नी पेन की एग्जैक्ट सिचुएशन पहले देखनी पड़ेगी कि कहीं डिफॉर्मिटी है, बोन बढ़ गई है, कैल्शियम फॉर्मेशन हुआ है, या बोन घिस के टच होना शुरू होगी, ठीक है ना, तो वो काफी उसमें डायग्नोज उसका प्रॉपर अगर होता है तो एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है। ठीक, छोड़ दीजिए, अभी थोड़ा सा बैठेंगे हाफ सिटिंग पोज। हाँ, स्पाइन कोशिश करें सीधा रहे। हाँ, सिर्फ 1 मिनट बैठें, 1 मिनट बैठ के आपको लगेगा थाइज और काफ आपके हल्का सा कंपन जैसा महसूस करेंगे, स्पाइन सीधा रखें, सीधा बैठ रहे। 1 मिनट में आपको लगेगा थाइज और काफ की स्ट्रेंथ आपकी अच्छे से मजबूत हो रही है, हल्का सा कंपन जैसा थाइज के ऊपर आता है। हाँ, बिल्कुल सिंपल है एक्सरसाइज, लेकिन थाइज और काफ दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव है। छोड़ दीजिए, अभी साइड में खोलेंगे घुटनों को, पैरों को मिलाया, घुटने साइड में खोलने और फिर बैठना है हाफ, स्पाइन सीधा रखें, थाइज और काफ एकदम से और ज्यादा स्ट्रेंथ, क्योंकि एंगल चेंज हुआ है, ज्यादा आपको लगेगा कि एकदम से आपकी यहां स्ट्रेचिंग पड़ रहा है थाइज और काफ के ऊपर। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए आराम से। अभी हल्की सी जंपिंग हम करेंगे 15 से 20 बार, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे टोज के ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, हाथों को भी ऊपर लेके जाने से पहले श्वास भरा ऊपर, श्वास छोड़ा नीचे, हथेलियां बाहर की तरफ ताकि हमारा हाथ पूरी तरह से स्ट्रेच हो। हाँ, हथेलियां बाहर की तरफ मैंने बोला है, यहां से हाथ जब आपका बाहर है तो अपोजिट में हथेलियों की आवाज आपकी नहीं आएगी। जब बाहर करते हैं हथेलियां, रेडियस और अल्ना जो दोनों बोन्स हैं, स्लाइड करके मैक्सिमम स्ट्रेचिंग आप हाथ के ऊपर देते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा खिंचाव पड़ता है, जो अपर आर्म है आपका, जो मसल्स है आपके ट्राइसेप्स और बाइसेप्स अच्छे से स्ट्रेच होते हैं, उसका फायदा आपको ज्यादा मिलता है। हाँ, जंपिंग सिर्फ अवॉइड करना है अगर हर्निया की किसी को शिकायत है तो, हर्निया की शिकायत है तो जंपिंग आपने अवॉइड करनी, और अगर है हर्निया की कोई शिकायत तो जितना क्लींजिंग बॉडी की रखेंगे, जैसे नेचुरोपैथी में एनिमा होता है, योगा में स्टमक वॉश होता है, और थेरेपी में कोलोन थेरेपी होती है पूरा कोलोन को क्लीन करने के लिए, वो महीने में एक बार जैसे आपको लगता है उस तरह से क्लींजिंग रख सकते हैं। सेमी लिक्विड डाइट आप रख सकते हैं ताकि डाइजेशन आपका अच्छा रहे। नॉर्मली क्या होता है, कई बार आंतों का जो हमारा स्पाइरल फोम है इस तरह से लगभग 28 से 30 फीट के करीब, वो जब ज्यादा उसमें वेस्ट जमा हुआ है और वो क्लीन नहीं हो पा रही तो धीरे धीरे वो आंतें वहां से लटकना शुरू होती है, वो स्किन वहां की लूज पड़ना शुरू होती है और नीचे की तरफ ऐसे आना शुरू होती है तो वो पेन करती है। लेकिन जितना आपकी आंतें साफ है, डाइजेशन आपका अच्छा है, उतना वो चीजों से आप अपने आप बच पाते हैं, क्योर हो पाती है। लेकिन क्लींजिंग आपको अच्छे से मदद करती है, जो भी चाहे तो डॉक्टर की एडवाइस के साथ महीने में एक बार जो लग्जेटिव होते हैं जो क्लीन करने के लिए होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन बेटर है कि नेचर वाले सिस्टम पे अगर रहें तो वो ज्यादा बेटर होता है। लेकिन बहुत मजबूरी है कि वो नेचुरल सिस्टम से चीजें क्लीन नहीं हो पा रही हैं, तो जो भी फिर आपको मेडिकल एडवाइस मिलती है, जो भी लग्जेटिव्स हैं जो एकदम से पेट को क्लीन करने के लिए हैं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको महीने में एक आध बार ही, एक या दो बार है ना। क्लींजिंग वाले प्रोसेस भी आपने 10-15 दिन किया, उसके बाद नेचर वाले सिस्टम भी 15-20 दिन किया, उसके बाद गैप दे दीजिए ताकि बॉडी अपने हिसाब से काम करना शुरू करे, अदरवाइज हमें उन चीजों की हैबिट बन जाती है। जैसे एनिमा भी देते हैं अगर, तो गर्म पानी जैसे हम रेक्टम से हमने दिए है तो वो क्या करते हैं, रेक्टम को खोलता है गर्म पानी, और जो खोलता है तो जो भी मल वहां से जमा है उसको जल्दी से बाहर करता है। लेकिन डाइजेशन के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए, नेचुरल सिस्टम में कॉन्ट्रेक्शन भी चाहिए और एक्सपेंशन भी चाहिए, ठीक है। ठंडा पानी उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, इसलिए उसके लिए फिर नेचर क्योर में उसका जो अपोजिट देते हैं वो ठंडे पानी की आपको हिप बाथ में बिठाते हैं साथ के साथ एनिमा देने के बाद वहां करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग कोशिश करके सिर्फ एनिमा पे ही डिपेंड करते हैं, वो 10-15 दिन करके छोड़ दीजिए, बाकी चीजें भी उसकी फॉलोअप कीजिए, ठीक है ना, ताकि नेचुरल बॉडी हमारी अपने आप, हमारा डाइजेशन अच्छा रहे, हमारे ऑर्गन्स अच्छे रहे, हमारी फिटनेस अच्छी रहे। चलिए अभी सिर्फ सामने आपने श्वास बाहर करना है, पेट को अंदर प्रेस करना है, श्वास बाहर, कपालभाति वाला। हाँ, जितना पेट को आप अंदर स्ट्रेच कर रहे हैं उतने जो हमारे ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, कोलोन है, वहां हल्का सा प्रेशर जा रहा है। उस प्रेशर की वजह से जो भी हमारा पैनक्रियास ग्लैंड है, इवन वहां भी जो हल्का सा प्रेशर बन रहा है पैनक्रियास ग्लैंड के ऊपर, जो भी वात पित्त कफ वहां जमता है वो वहां से धीरे 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 स्लाइटली वहां से हटता है, और शुगर की दिक्कत भी आपकी ठीक होने में, हाँ, घुटनों के ऊपर, घुटनों का एक तो असर जो मैंने एक्सरसाइज अभी कराई थी घुटनों के लिए और इसके लिए, ये एक अच्छी है। दूसरा, पैर को पीछे आपने हिट करना है यहां बटक्स के ऊपर इस तरह से, हाँ, पर घुटने का जोड़ हिंज जॉइंट है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है ना, तो इसको इस तरह से ये हल्का सा हिट करना पीछे, दूसरा हाँ वो कार्टिलेज अगर घिस गए हैं तो वहां फिर आपको यूज कम करना है, सिकाई ज्यादा करनी है, और कई बार जो फ्लूड होता है जो हमारे हर जॉइंट्स के साथ साथ जो फ्लूड होता है उसकी डेंसिटी में कई बार केमिकल चेंजेस आना शुरू होती है, उस वजह से भी कई बार पेन बढ़ता है, तो वो भी डायग्नोज आप प्रॉपर करा लीजिए। वो डायग्नोज अगर करा लेते हैं उसके बाद जो एक्सरसाइज आप करते हैं या जो मेडिसिन आपको एडवाइस मिलती है सारी चीजों को एक साथ यूज करेंगे तो बेटर आप उसको रख पाएंगे, अपने हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। चलिए एक रनिंग करते हैं जी, किस चीज का, हाँ, न्यूरोपैथी वाला जो सिस्टम है जो मैंने स्टार्टिंग में ब्रेन की एक्सरसाइज कराई थी वो इसीलिए कराई थी कि हमारे ब्रेन सेल्स जो न्यूरॉन्स हैं एक बार अगर डेड होना शुरू होते हैं मीन्स उनका रेजुवनेशन बड़ा मुश्किल होता है, बाकी सेल्स हमारे लगभग 3 से 4 वीक में रिकवर करते हैं, रेजुवनेट होते हैं। जैसे इवन बोन है अगर टूटी है आपकी तो लगभग 12 हफ्ते तक आपकी बड़ी भी कोई बोन है तो वो जुड़ जाती है, वो सेल्स और टिश्यूज आपके मैशअप हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन सेल्स हैं, एक बार अगर थोड़ा सा वहां नुकसान होना शुरू होगा उसका रेजुवनेशन बड़ा टफ होता है, और ब्रेन सेल्स में कहीं भी कुछ गड़बड़ी आती है तो फिर वो न्यूरो वाली प्रॉब्लम्स आपकी नीचे तक शुरुआत होती है, उसका फिर बड़ा टफ ट्रीटमेंट बनता है। इसलिए बेटर है आप जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना ब्रेन वाली जो स्टार्टिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज की है वो करेंगे, योग में एक सूत्र नीति और जल नीति होती है जो आपके साइनस वाली प्रॉब्लम्स को दूर करके ऑक्सीजन इनटेक आपका बढ़ाती है ताकि ब्रेन तक ऑक्सीजन ज्यादा जाता है वो आपको हेल्प करेगा। अगर कुछ नहीं मिलता है तो बाबा का जो मेडिटेशन है वो आपको हर तरफ से मदद करेगा, प्लस जो थेरेपी है वो आप लेते रहिए सब। ठीक है, चलिए रनिंग करते हैं 30 सेकंड के लिए सिर्फ। हाँ, यहां पोजीशन रहेगी, हर बार पैर को पीछे फोल्ड करना है, हर बार सांस लेना और छोड़ना। ठीक है, 30 सेकंड से 1 मिनट तक कोशिश करेंगे। चलिए, हर बार पैर पीछे हिट होना चाहिए, पंजों के ऊपर करेंगे तो ज्यादा फायदा है। हर बार पैर भी पीछे हिट हो, पैर पीछे लगे पूरा, ये हर बार सांस लेना और छोड़ना। हाँ, पंजों के ऊपर, टोज के ऊपर करें आराम से। हाँ, 1 मिनट की रनिंग में अगर आपका पल्स रेट 90 और 100 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है तो फिटनेस आपकी अच्छी है। जैसे टीएमटी टेस्ट करा, जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है, तो अगर पल्स रेट ज्यादा नहीं उखड़ रहे, हार्ट आपका उसको सह रहा है उस लोड को, तो आपकी फिटनेस अच्छी है। इसके साथ साथ आपकी हार्ट की फिटनेस, अगर कहीं बीपी की दिक्कत आ रही है, हार्ट की कोई दिक्कत है और आपको चेक करना है, जी पैर के लिए भी बता दो। हाँ, कई बार वो वेन्स वगैरह जो होती है ना, अभी बात करते हैं। तो हार्ट के लिए जैसे मैं बोल रहा था कि एक टेस्ट होता है ली कूपर्स 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट। इसमें आपने 12 मिनट की रनिंग, जॉगिंग या जंपिंग, जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। फर्स्ट डे आपका डिस्टेंस नोट कर लीजिए। ठीक है, समझो 1 किलोमीटर आपने फर्स्ट डे किया है या 1.2, जितना भी आपका वो डिस्टेंस आप नोट कर लीजिए। रेगुलर आपकी वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग धीरे धीरे करते जाइए। लगभग 30 से 40 दिन बाद फिर दोबारा एक बार चेक कीजिए। अगर आपका डिस्टेंस इंप्रूव हो रहा है और पल्स रेट आपका ज्यादा उखड़ नहीं रहा है तो इट मीन्स आपकी हार्ट इंप्रूवमेंट पे जा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हार्ट की कुछ दिक्कत आ रही है तो जो कोलेस्ट्रॉल है आपका वो लगभग 200 से नीचे, आजकल तो वैसे 150 से ही नीचे कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं, एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स, तो कोलेस्ट्रॉल अपना बैलेंस रखें और कंट्रोल में रखें। डाइट में आपका डबल टोन्ड मिल्क करें, जो भी सैचुरेटेड फैट है वो आपका कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा बढ़ाता है। सैचुरेटेड फैट जो होता है, एनिमल फैट जो है, वो ज्यादा बढ़ाता है आपके कोलेस्ट्रॉल को। इसलिए कोशिश करके डबल टोन्ड मिल्क अगर यूज करते हैं तो उसमें फैट 1% होता है, 1 से 1.5% फैट होता है। फुल क्रीम में लगभग 6 से 8% होता है ना। 1 kg मिल्क अगर हमने यूज किया, 6 से 8% उसमें फैट है, तो 60% तो उसमें फैट है 1 kg में। अब उसको बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए या तो उतना वर्कआउट हो या उतना हैवी एक्सरसाइज हो, तब तो वो इजीली डाइजेस्ट होता है, अदरवाइज डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए बेटर है कि डबल टोन्ड मिल्क अगर यूज करते हैं तो आपके हार्ट के लिए आपको बहुत अच्छे से फायदा रहता है। प्लस जो प्राणायाम की एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्लस प्राणायाम आपको उसमें मदद देता है। तो प्लीज बैठ जाइए, अभी नेक्स्ट आपका सेशन शुरू होने वाला है। चलिए 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और माइंड को कंसंट्रेट करें आपके आईब्रोज के ऊपर और महसूस करें कि जो भी आपने योगिक व्यायाम किया है उससे हमारा सारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से सभी ऑर्गन्स में फैला है। हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से हेल्दी हैं और मन पूरी तरह से प्रसन्न है। थैंक्स करें परमपिता परमात्मा का, सुप्रीम सोल का, सर्वोच्च सत्ता का, या जिनको भी आप मानते हैं। दोनों हाथों को हल्का सा रब करें, आंखों पे स्पर्श दें, छोड़ दें अभ्यास। ओम शांति, पूरा करते हैं। थैंक यू। अच्छा, चलिए जब तक हमारा 5-7 मिनट और है तो आपने कुछ पूछना है तो वो बीपी के बारे में, बीपी बढ़ रहा है। बीपी बढ़ने का रीजन ज्यादातर जो होता है, जो हमारी वेन्स हैं, जो ब्लड का एक सर्कुलेशन नॉर्मल चल रहा था, वहां जब हमारे उन नसों में थोड़ा थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे जमना शुरू हुआ है धीरे धीरे, तो वहां उसको उतना स्पेस नहीं मिल रहा है, तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा बढ़ेगा। दूसरा, कई बार टेंशन होती है ज्यादा, उस वजह से भी बीपी हमारा दिक्कत करता है। तो बेटर है जो यहां से आप राजयोग सीख के, अगर इसका आपने एक महीना भी अभ्यास किया तो यकीनन आपका बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, डाइट में जरूर आप प्लस जो सैचुरेटेड फैट है वो अवॉइड कीजिए, और नींद आपकी जितना साउंड स्लीप आती है उतना बीपी हमारा धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। डाइट बिल्कुल लाइट रखिए, साल्ट उसमें कम रखिए, सैचुरेटेड फैट आप कम रखिए, तो वो चीजें आपकी कंट्रोल में आती है। जी हाँ जी हाँ जी, ब्लॉकेज के लिए क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है हमारी नसों के अंदर, तो ब्लॉकेज बढ़ना शुरू होती है। ब्लॉकेज जब आप चेक करेंगे तो हमारे पास जो डायग्नोसिस सिस्टम है उसमें आपकी ब्लॉकेज 60, 70, 80 या 90 ऐसे आपको पता पड़ेगी एंजियोग्राफी के दौरान। जो ब्लॉकेज है उस सिस्टम को खोलने के लिए जो एलोपैथी में तरीका है वो तुरंत के लिए स्टेंटिंग है, एंजियोग्राफी है। जो तुरंत वहां एंजियोग्राफी क्या करती है, एक स्टील वायर है आपकी नस से धीरे 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 उसको ब्लॉकेज जहां है वहां जाके जो बैलून है और जो स्टेंट है वहां जाके उसको सेट करते हैं। ठीक है, बैलून वहां से उसको खोलता है उस ब्लॉकेज को जो ज्यादा अभी दिक्कत कर रही है, और स्टेंटिंग जो है स्टेंट वहां से एक छोटा सा स्पेस क्रिएट कर देता है कि रेगुलर इसने एक स्पेस अभी बना दिया है, आपका ब्लड अभी यहां से आराम से पास हो जाएगा। लेकिन लॉजिकली जब आप देखते हैं जो आपका कोलेस्ट्रॉल था उसको हमने प्रेस किया है, रिमूव नहीं किया है। तुरंत में आपको ट्रीटमेंट मिल गया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पैथी है, बहुत अच्छा आपको क्योर मिल गई है, क्योंकि जो आगे नुकसान होना था उस नुकसान से हम बच गए। ठीक है, लेकिन जो ये हटाया है, जो प्रेशर दिया है, ये फैट वहीं का वहीं है और ये धीरे धीरे दोबारा बढ़ना शुरू होगा। और ज्यादा जब किसी चीज को दबाते हैं तो आप रिजल्ट जान ही सकते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, इसलिए स्टेंटिंग तुरंत वाला ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है जो एंजियोग्राफी में मिला है। रेगुलर जब आप डाइट में कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें कम कर देते हैं, साल्ट कम कर देते हैं, सैचुरेटेड फैट आप मैक्सिमम अवॉइड कीजिए कुछ टाइम के लिए, तो वहां प्लांट वाली जो चीजें हैं, प्लांट से जो ऑयल है या जो भी आपको चीजें मिल रही हैं, प्लांट बेस्ड अगर यूज करते हैं ज्यादा तो धीरे धीरे वो कोलेस्ट्रॉल का रिवर्सल शुरू होता है। डॉक्टर डीन ऑस्टिन और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो रिवर्सल देते हैं इन चीजों का, पॉसिबल है। लेकिन तुरंत में अगर कहीं बहुत ज्यादा ब्लॉकेज आ गई, आपको पता ही 90 और 100 पे लग गया है, तब फिर आपको तुरंत वाला जो ट्रीटमेंट है जो एलोपैथी डॉक्टर ने आपको एडवाइस किए हैं वो आपको तुरंत तो लेना ही लेना है सर। ठीक है ना, वहां से फिर उसको अवॉइड मत कीजिए। लेकिन अगर पहले क्योर करते हुए आ रहे हैं तो वो चीजें आपको बचाती है उस चीज से। चलिए नेक्स्ट सब कंसेशन आ गए हैं हमारे स्पीकर। ओम शांति, थैंक यू।